सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सौरभ और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं हमारे YouTube के चैनल पे। और अभी का जो विषय है ये है रूरल एडुकेशन, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के साथ। प्रकाश पांडे है उनका नाम और वो बिहार छपरा से बिलोंग करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा एक बार मैं प्रकाश के बारे में आप लोगों को बता दूँ और उसका जो इनिशिएटिव है उसके बारे में भी आप सब लोगों को थोड़ा ब्रीफ दे दूँ, सो दैट आप लोगों को पता चलेगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये क्या काम कर रहे हैं। और फिर हम जो हैं प्रकाश के साथ डिटेल में गाँव के एडुकेशन या रूरल एडुकेशन को लेकर बात करेंगे। प्रकाश पांडे जो हैं वो बिहार से, हम लोग और अंदर की तरफ जाएंगे तो छपरा ज़िला आएगा, और छपरा ज़िला से भी लगभग 25 से 30 किलोमीटर अंदर है इनका घर, जहाँ पे इनका जन्म हुआ है और उधर पे ही वो बड़े हुए हैं। और उसके बाद उनमें एक डिटर्मिनेशन था कि मैं इंग्लिश पढ़ूँ, क्योंकि जब वो स्कूल पे थे तो उधर पे उतना खास इंग्लिश या कंप्यूटर ये सब कुछ था नहीं। और उसके बाद जब उनका ये डिटर्मिनेशन उनको बाहर के शहरों में लेके गए, उधर पे अपने बलबूते पे इन्होंने इंग्लिश का पढ़ाई किया, कंप्यूटर सीखा, और उसके बाद जब आगे चलते गए तो इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के लिए इन्होंने एग्ज़ाम दिया और बहुत ही अच्छा इनको जो है प्लेसमेंट मिला। और आज ये इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं, और उसके साथ साथ जब ये अपने गांव में छुट्टियों के समय वापस आते थे तो इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए, मेरे गांव में एडुकेशन कम है, जो मुझे मिला है वो मेरे बच्चों को भी मिलना चाहिए। और उसी हिसाब से इन्होंने अपने गांव में ही एक स्कूल चालू किया, इन्होंने चालू किया जिसका नाम है पाठशाला इंटरनेशनल स्कूल, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और एक ऐसे गांव में जो शहर से बहुत ज़्यादा अंदर है। और आज हम बात करेंगे उसी गांव के एडुकेशन को लेके, पहले कैसा था, उधर के सरकारी स्कूल कैसे हैं, और कैसे जो हैं प्रतीक ने सॉरी माफ़ कीजिएगा प्रकाश ने अपने स्कूल का शुरुआत किया, कैसे शुरुआती उनका फाइट रहा और आज किस पोजीशन पे है, लॉकडाउन में क्या हालचाल है, उधर के बच्चों का क्या लाइफ है, उधर पे लड़कियों का क्या लाइफ है, और आने वाले समय में रूरल एडुकेशन क्या हो सकता है। हम आज इसी सारे विषय में थोड़ा सा इन डेप्थ प्रकाश के साथ बात करेंगे। प्रकाश वेलकम, और क्या तुम मुझे सुन सकते हो?
ज्यादा सुन सकता हूँ आपको, धन्यवाद।
जी, तो मैंने तुम्हारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो बता दिया है, अगर मेरे से कुछ मिस हो गया है तो तुम प्लीज़ एक बार अपने तरफ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो।
हाँ बिल्कुल, नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है और फाइनली हम लोग अभी रूरल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है छपरा, तो हम लोग अभी बिल्कुल टाउन में नहीं है, टाउन से 25-30 किलोमीटर दूर देहात में काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही रूरल एरिया है। यहाँ पे जरूरत थी एक एजुकेशन की, क्योंकि जब मैं अपना एजुकेशन ले रहा था सरकारी स्कूल से, अपने स्कूल से गांव में ही, तो उस समय हम लोग बोरे पे बैठते थे, मतलब बैठने के लिए बेंचेस नहीं थे, कंप्यूटर्स तो थे ही नहीं, बुक्स नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थे, तो मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं आगे निकला। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे बैच के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ थे, वो कुछ शायद कुछ नहीं कर पाया, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम का फॉल्ट था। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम आगे बढ़े तो फिर बढ़ते चले गए और पीछे की तरफ नहीं मुड़े। फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि जैसे बाकी लोग बात करते हैं वैसे हम लोग भी बात करें, लेकिन केवल बात करने से समाधान नहीं मिलने वाला था, तो हम लोगों ने रूरल एजुकेशन पे काम करना शुरू किया। अभी हम लोग पाठशाला के माध्यम से लगभग 300 बच्चों को पढ़ाते हैं, दे आर गेटिंग बेटर एजुकेशन। हमारे पास कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फील्ड, सब कुछ ही है, मतलब वैसे सारे सारी सुविधाएं हैं जो एक प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए। और पाठशाला में हम लोग कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शुरू से ही बच्चे हैं, देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के लिए, तो हम लोग केवल पढ़ाते नहीं है, यहाँ पर उनको स्किलिंग का काम करना, उन्हें छोटे मोटे स्किल्स दें, जैसे कि कंप्यूटर बनाना। 5वीं क्लास के बच्चे जो हमारे पाठशाला में है वो कंप्यूटर को रीअसेंबल कर सकते हैं, खोल के फिर से बना सकते हैं, तो हम लोग इन सब चीजों पे खासा ध्यान रखते हैं, ज्यादा फोकस।
आगे बढ़ते हैं। प्रकाश, मुझे एक चीज़ ये बताओ कि जो हम शहरों में बैठ के एक गांव का इमेजिनेशन करते हैं, एक छवि बनाते हैं हमारे दिमाग में, और उस छवि को अगर हम एडुकेशन के साथ जोड़े तो गांव का जो एजुकेशन बना हुआ है, जो बुनियादी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, जो सरकारी एजुकेशन है, उसका हाल क्या है, सच्चाई क्या है?
बाबा हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, हम लोग शहर में ऑफ कोर्स जो प्लांट्स बनते हैं हमारे लिए, मतलब गांव के लिए, वो कहीं ना कहीं शहर में ही मतलब लोग बैठ के बनाते हैं और वो अपने हिसाब से इसका रूपरेखा लेते भी हैं। हम लोग जस्ट एक चीज से यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स के मॉडल है बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्ले स्कूल्स, वो सरकारी व्यवस्था के हिसाब से हमारे पास आंगनबाड़ी है। और आंगनबाड़ी की दुर्दशा हम एक ही चीज से समझ सकते हैं कि 2 साल पहले बिहार में, मेरे जिले की ही बात है, मिड डे मील खाने से, मतलब आंगनबाड़ी का मिड डे मील खाने से लगभग 20 बच्चों की मौत हो चुकी थी। तो हम लोग जस्ट एक ही एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट के प्ले स्कूल्स हैं, मतलब ये कहा जाता है कि बच्चों का जो बुनियाद होता है वो बचपन से ही हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो एक वो बुनियाद जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में ले रहे हैं, टाउन में ले रहे हैं, सिटी में ले रहे हैं, और एक दूसरी चीज जो बच्चे हमारे पास आंगनबाड़ी जैसे मतलब प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में ले रहे हैं, तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। फिर भी जो लोग, जस्ट मेरा मानना है कि जो लोग बैठ के चीजें बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो जो जो चीजें बुक्स में है या फिर जो रूल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन होते हो तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हम लोग अगर एजुकेशन की बात करें तो केवल बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हम लोग एक पीढ़ी के साथ साथ उसके पिछले वाले पीढ़ी को भी पढ़ाना पड़ता है। अभी फिलहाल में अगर पेरेंट्स जॉब करते हैं शहरों में, तो वो अपने बच्चों के लिए ही लोकेशन ढूंढते हैं, मतलब उनके हिसाब से वो अपना लोकेशन चेंज कर लेते हैं कि इन्हें बेटर एजुकेशन मिल पाए। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, हमारे पास एजुकेशन को वैल्यू दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एजुकेशन का क्या वैल्यू है। तो पाठशाला मॉडल में हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग कितना भी ख्याल रखें, अब एक स्कूल है तो स्कूल के माध्यम से हम लोग 5 घंटे 6 घंटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर बच्चे अपने घर पे जाएंगे तो 18 घंटे वहीं पे हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब हमारे पास बच्चे आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो शुरू में वो जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि वो गाली दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि उन्हें उन्हें बोलने भी नहीं आ रहा था, 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, उन्हें ना शूज पहनने आ रहा है ना चप्पल पहनने आ रहा है, नहा के तो बिल्कुल नहीं आएंगे, और बोले में तो ऐसा लगेगा जैसे गाली देंगे। मतलब जो बेसिक चीजें हैं जिन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मतलब उन सब चीजों को भी हमें यहाँ पे सिखाना पड़ता है, उस पर भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और शहरों में हम लोग कुछ चीजें ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं, जैसे कि हम जा रहे हैं सड़क पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक लाइट्स को देख के हम समझ जाएंगे कि भाई रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो आगे बढ़ना है, या फिर जो भी है कॉशनरी है या फिर क्लियर है, ये सब चीजें हम लोग देख के समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए कुछ भी नहीं है, हर चीज का हमें मॉडल बनाना है, उसे सिखाना है, और केवल थ्योरी से नहीं होता, हमें चीजों को प्रैक्टिकल देने मतलब देने की जरूरत है, उसका एक्सपोजर उन्हें फील होना चाहिए। तो हम लोग तो इसका हालांकि फैसिलिटी रखे हैं कि अपने पास हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डिजिटल क्लासेस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ एक्सपोजर दिया जा सके। तो रूरल एजुकेशन और जो एजुकेशन सिटीज में मिल रहा है, मतलब अर्बन एरियाज में मिल रहा है, उसमें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये फील होता है कि अगर मैं बच्चों को 8th और मैट्रिक करा भी दूं और फिर इनका कंपटीशन उन बच्चों से हो जो शहर में पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारे बच्चे उतना बेहतर कर पाएंगे। हालांकि हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई बढ़िया एजुकेशन शुरू से जिसे मिल रहा है वो बेहतर होगा। और अभी तो शहर और गांव के बीच में बहुत बड़ी खाई है, हम लोगों को बहुत ही मतलब 1 दशक काम करना पड़ेगा थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए। चलिए बदलाव मिलेगा, हम लोग काम भी कर रहे हैं इस पर।
और मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस इलाके में तुम्हारा ये स्कूल है, उस इलाके का अगर मैं वर्णन देना चाहूँ तो कैसे वर्णन दे सकते हैं? मतलब मैं कैसे लोगों को समझाऊँ कि ये कितना बिछड़ा हुआ एक जगह है, कितना शहर से दूर, कैसे इसका वर्णन हम दे सकते हैं सो दैट लोगों को समझ में आए कि ये कितना, हम कितने अंदर की बात कर रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, इसमें मैं एक ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि आज हमारे गांव में सड़कें नहीं है, बिल्कुल सड़कें हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, आती जाती रहती, कोई मतलब ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन हम जिस मतलब वर्ग को पढ़ाना चाहते हैं, जिन लोगों को हम पढ़ाना चाहते हैं, उनका सिचुएशन मैं बता सकता हूँ। हम लोग कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो 12 साल 13 साल और 15 साल के हैं हमारे पास, वो दूसरे और तीसरे क्लास में पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें काउंटिंग भी नहीं आता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें काउंटिंग नहीं आता है, प्रॉब्लम ये है कि उनके माता पिता मजदूर हैं, वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, मतलब आज पैसा कमाएंगे तो आज खाएंगे, और वो अपने बच्चों को भी लेकर चले जाते हैं कि अगर हमारे साथ फील्ड में जाएगा काम करने के लिए, फिर मजदूरी करेगा, तो इनिशियली 50 रुपये 100 रुपये उन्हें लोग दे देते हैं। मैं ये बहुत बार नोटिस किया कि हमारे पाठशाला में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिनका अटेंडेंस महीने में 10 दिन 15 दिन ऐसे नदारद रहता था, मतलब वो एबसेंट रहते थे हमारे स्कूल में भी। हालांकि हम 3 साल में इस पे काम किए हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि हमें सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट कॉपीज चाहिए या फिर बुक्स चाहिए या फिर जो भी है ये सब स्टेशनरीज चाहिए, तो उनके पास पैसा नहीं है कि ये सब बेसिक चीजें भी वो लोग खरीद पाए। बच्चे दिन भर, मतलब अभी भी यहाँ पे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, वो नंगा घूमते हैं, नंगा मतलब दे जस्ट वॉक न्यूड, उन्हें मतलब पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। मुझे नहीं आता कि हमारे बचपन में आज से 20 साल पहले भी हम लोग ऐसे थे कभी, हम लोग या फिर शहर में मतलब अपने बच्चों के लिए लोग सोचते हैं कि यार एक छोटा सा ओकेशन है तो हम लोग कुछ ना कुछ खरीद देते, लेकिन इनके पास मतलब बिल्कुल समझिए कि एक गंजी नहीं रहता है पहनने के लिए। तो सिचुएशन तो बस ऐसे ही है, लोग इन्हें पता भी नहीं है कि इनका बच्चा पढ़ के क्या करने वाला है, किस लिए पढ़ने वाला है, तो इस पे ये ध्यान भी नहीं देते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम केवल बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, हमें उनके गार्जियंस को भी बताना है कि आपका बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है डेली 5 या 6 घंटा दे रहा है, तो हम आपको उम्मीद दे रहे हैं कि आपका बच्चा आगे चल के ये वेज मतलब डेली मजदूरी नहीं करेगा, हम लोग इसे कुछ ना कुछ बेहतर बनाएंगे। और शायद अभी हमारे पास से कुछ ऐसे बच्चे हैं, मतलब हम लोग तो 8 तक ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग मैट्रिक करा है और उसके बाद का भी एजुकेशन मैं खुद करवा रहा हूँ उनको। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे ऐसा ना हो कि मैट्रिक करने के बाद फिर वही चले जाए, हम लोग यहाँ सोल्यूशन पे काम करें, परमानेंट सोल्यूशन देंगे।
मतलब कि 10 से 15 साल के बच्चे जो हैं वो 2 और 3 पे पढ़ रहे हैं, मतलब हालात बहुत ही बुरे हैं तो।
हाँ बिल्कुल, मतलब 10 साल 15 साल के बच्चे हैं और लिटरली उन्हें अगर यहाँ पे बुला के बैठाया जाए और नर्सरी क्लास का अगर मैं उन्हें रीडिंग देने के लिए दे दूँ तो उन्हें देने नहीं आएगा, मतलब जैसे हम लोग आ और म आम पढ़ के बोलते हैं ये भी उन्हें नहीं आएगा। हो सकता है कि कैपिटल ABCD स्मॉल ABCD उन्हें नहीं आएगा, ये सिचुएशन तो बहुत ही बुरी है।
तो ऐसे भी कोई केसेस हैं जो कि इसी उम्र के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते थे फिर भी उनका यही हाल है? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल बिल्कुल आ रही है।
हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ये 10-15 साल के जो बच्चे हैं जिनको हम नर्सरी में बिठा देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या ये सब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद ये हाल हुआ है कि वो कभी स्कूल ही नहीं गए?
देखिए, अगर डेटा हम लोग देखें, मतलब डेटा की बात करें, सरकार तो बोलती है कि सारे लोग पढ़ रहे हैं और इनका स्कूल में नाम भी है डेफिनेटली, मतलब मैक्सिमम लड़के ऐसे हैं जिनका सरकारी स्कूल में नाम है और वो मिड डे मील के लिए कभी कभी जाते भी हैं फिर नहीं जाते, उन्हें जब कपड़ा मिलता है स्कूल से तो वो कपड़ा लेने जाते हैं। मतलब ये समझिए कि जो स्कूल ड्रेस है वो ये जनरली अपने घर में यूज करते हैं, मुझे लगता है केवल इन्हीं फायदों के लिए उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में हुआ है। इस डेटा के हिसाब से बिहार का लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन लिटरेसी है कहाँ पे, एजुकेशन है कहाँ पे? सरकार के पास एक डेटा मिल जाएगा कि हमारे इस, जैसे कि मेरे गांव का जो स्कूल है वहां पे 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कोई पढ़ रहा है। स्कूल में अगर अटेंडेंस देखा जाए तो 50 बच्चों का होगा मुश्किल से, और वो भी वही बच्चे होंगे जो अच्छे अच्छे फैमिली से हैं, मतलब जो जा सकते हैं। मतलब मेरा अच्छा फैमिली कहने का मतलब ये नहीं है कि वो काफी बेहतर है, लेकिन उनसे थोड़ा सा बेहतर है, वो अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ जस्ट मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे विद्यालय में डिजिटल क्लासेस को लेकर एक TV लगाया गया और मैं 1 महीने के बाद वहां पे देखने गया तो टीवी में लगभग अब क्लियर वर्ड्स में बोल सकते हैं उसमें जंग लग चुका था, मतलब ना ही कोई पढ़ाने वाला है और ना ही किसी को पता है इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा। तो सरकार के डेटा में तो ये भी हो गया कि मैं एक डिजिटल क्लास को वहां पे बना चुका हूं, लेकिन उसका फायदा क्या है ये हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ये हम लोग महसूस कर सकते हैं।
समझा, मतलब काफी डिफरेंस है सच्चाई और हकीकत में। तो मेरे को ये बताओ कि जब तुमने ये डिसाइड किया कि मुझे एक अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना है और वो भी एक अच्छे लेवल पे बनाना है, तो शुरुआती कठिनाइयां क्या थी तुम्हारे सामने?
मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मतलब मिडिल नहीं बोल सकता, लोअर मिडिल बोल सकते हैं। मैं सिचुएशंस ऐसे भी देखा हूँ कि अब एक और बात यहाँ पे जानने की जरूरत है कि इंटर के बाद मेरी पढ़ाई इसलिए छूट गई थी क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। मैं इंटर के बाद तुरंत जॉब करना शुरू किया, फिर पढ़ाई किया खुद से, वैसे तो समझ सकते हैं। तो सिचुएशन मेरे घर में ऐसी थी कि 50 रुपये नहीं होते थे सब्जी खरीदने के लिए। तो सडनली इट वॉज अ कॉल, मतलब बोल सकते हैं कि शायद ऊपर वाले ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि यार, मतलब कहीं से इंस्पिरेशन मिला मुझे कि चलो कुछ करो, अपने घर वालों के लिए करो, अपने सोसाइटी, अपने गाँव के लिए कुछ करो। 2017 में जब मैंने कॉल लिया, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर मतलब पाठशाला शुरू करने के लिए, तो इनिशियली मेरे फैमिली से बहुत ज्यादा इसका मतलब विरोध हुआ। लोग नहीं चाहते थे और बिल्कुल नहीं चाहेंगे। काफी स्ट्रगल के बाद अगर किसी का इकलौता लड़का थोड़ा सा पैसा कमा रहा है, जो अपने फैमिली को अच्छे से देख सकता है या फिर उन पे स्पेंड कर सकता है, तो कोई भी चाहेगा कि वो अपने फैमिली का ही मतलब ख्याल रखे। तो उन्होंने काफी विरोध किया इसका। खैर, इसके बावजूद हमारा गांव में एक घर था यहाँ पे, तो उसमें मैं पाठशाला शुरू किया। बिल्कुल 3 रूम था, वो भी रूम नहीं, बरामदा था, टीन का शेड था उसके ऊपर से। उसमें हम लोग भूसा रखते थे गाय को खिलाने वाला। तो मैं छुट्टी पे आता था यहाँ पे और खुद से पेंट करता था, मतलब दिन रात चूना करता था या फिर कारपेंटिंग का काम करता था, मतलब बहुत मेहनत किया मैंने। और रात को 1-1 बजे तक काम किया मैं यहाँ पे। इनिशियली लोगों ने ये बोला कि भाई अब ये फौजी पागल हो गया है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट आने लगे थे मेरे घर से या फिर मेरे कॉलोनी के लोगों से कि अभी पागल हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या पता। तो खैर, इनिशियली मेरे पास जो भी सेविंग्स थे अपने 7 साल के मतलब जॉब के, मैं उसमें इन्वेस्ट किया और हम लोग पाठशाला शुरू किए। सबसे पहले हमारे पास 25 बच्चे थे जब हम लोग शुरू किए थे 2017 में। स्ट्रगल चलता रहा, अभी हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चे हैं और हम लोग और भी डिफरेंट पैटर्न्स में काम कर रहे हैं। मतलब ये चाइल्ड एजुकेशन के अलावा भी हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स में काम कर रहे हैं। तो मैं ये फील करता हूँ कि जो पायदान एक मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था, अब हम लोग उससे काफी बेहतर है। अगर नंबर में काउंट करें तो वी आर मतलब 12 गुना ज्यादा है जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। तो डेफिनेटली हम लोग काफी बेहतर कर रहे हैं। और एक चीज मैं हमेशा रिमार्क करता हूँ कि सफर में है, पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कि काफी बेहतर करूँ, हो सकता है जो भी कर रहा हूँ वही करता रह जाऊँ, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ या फिर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टोरी या मतलब स्टोरीज बनती है, कहानियां बनती हैं, चीजों से लोग जो इंस्पायर इंस्पायर होते हैं, वो मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल से ही होते हैं। और हम लोग का स्ट्रगल काफी बेहतर है, काफी दूर तक जाने वाला है, ये चलता रहेगा।
तो शुरुआती समय में जब स्कूल बन गया था और नेचुरली शुरुआत के समय में बच्चे उतने तादाद पे नहीं आए होंगे, तो कैसे आप लोगों ने, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपके उधर पे एकदम मजदूर और लेबर क्लास के लोग रहते हैं जिनके लिए एडुकेशन का शायद कोई मायने ही नहीं है, तो कैसे आप इन लोगों को मनाए कि भाई आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजिए और हम उनके लिए एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं?
अब मैं हमेशा ही कुछ यूनिक आइडियाज के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं यहाँ पे। देखिए, दिन में तो मेरे पास टाइम नहीं होता था क्योंकि मैं बताया ना कि मैं खुद ही चुना करता था स्कूल में। दिन में मैं बिल्कुल ही काम करता था क्योंकि छुट्टी मेरी लिमिटेड ही होती थी। अब तो ये सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि हम लोग एक 3 मिनट का मूवी बनाए, 3 या 5 मिनट का मूवी था, जिसमें हमने ये दिखाया था कि हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे पास बच्चा रहे तो खेल रहे हैं, हम लोग अच्छे से केयर कर रहे हैं। फिर हमने ये दिखाया कि वो बच्चे मतलब आगे चल के डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं या फिर फौज ज्वाइन कर रहे हैं, फिर टीचर बन रहे हैं, कुछ कुछ बन रहे हैं। तो ऐसा हमने एक मूवी शूट किया, 5 मिनट का था वो। और हम लोग शाम को निकलते थे, मतलब 5 बजे के बाद हम लोग निकलते थे फील्ड में। गाँव में एक सिस्टम है कि लोग चौराहे पे, जहाँ पे भी चौराहा होता है, वहां पे 8-10 लोग खड़े होकर बात करते हैं, मटर गश्ती बोलते हैं उसे देहात भाषा में। तो हम लोग चौराहे पे जाके अपना टीवी लगाते थे और वहां लोगों को मूवी दिखाते थे। तो ये गांव के लिए बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था। लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, शायद कुछ चल रहा है। तो हम लोग शुरू किए, लोग आना शुरू किए, मतलब सिचुएशंस ऐसे थे कि एक एक जगह 50 लोग आते थे हमसे मिलने के लिए। हम उस मूवी को रिपीटेड मोड में चलाते थे या फिर कुछ और दिखाते थे, कुछ मोटिवेशनल दिखाते थे। तो एक एक जगह हम आधे घंटे रुकते थे, वहां पे 50 लोगों से इंटरेक्ट करते थे। मूवी दिखाने के अलावा जो लोग भी थोड़े से इंटरेस्टेड मिलते थे, हमारे पास लिस्ट था, हम लोग उनका, हमने उनका कॉलम बनाया, उनका नाम लिखा, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों को करना था वो हमने किया। और मुझे लगा कि इस एक वीक के कैंपेनिंग में हम लोग 800 से ज्यादा लोगों से मिले, मतलब वी मेट मोर देन 800 पीपल। हम लोग यहाँ पे इनिशियली 5 गांव कवर किए थे, दैट इज अराउंड 20 किलोमीटर,
अरे बाप रे।
20 किलोमीटर के एरिया में हम लोग इतने लोगों से मिले थे और फायदा हुआ। चलिए इनिशियली लोगों को भरोसा नहीं होगा कि भाई हम अपने बच्चे को क्यों भेजें, तो ठीक है हमारे पास 25 बच्चे थे मुझे याद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो 25 हम लोगों का मेहनत बेकार नहीं हुआ, वो 25 मतलब 25 लोग एटलीस्ट भरोसा तो किए हमारे इस कंपनी पे, वो आए और डेफिनेटली हम लोग का रिजल्ट इतना बढ़िया रहा कि जो लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं अच्छा खासा पैसा लेके चलाते हैं उनसे हम लोग काफी बेहतर हो गए, तो एस्टैब्लिशमेंट हम लोग का ऐसे ही था इनिशियली। हेलो,
हाँ, बोलो।
तो एस्टैब्लिशमेंट हम लोग का इनिशियली ऐसे ही था और मुझे लगा कि हम लोग भरोसा लोगों का बनता चला गया, मतलब तो इतना हम लोग प्रोग्रेस किए, मुझे जैसे पता है या फिर जो यहाँ पे आया है वो देख सकता है, जो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं मतलब जो बिजनेस माइंडेड है वो 10 साल से चला रहे हैं, फिर भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके मॉडल, उनके लैब्स, उनके कंप्यूटर सिस्टम्स हम लोगों से बहुत पीछे है। हम लोग 3 महीने में सॉरी 3 साल में उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, हमारे पास सब कुछ ही है, क्योंकि केवल पढ़ाना मतलब ऐसे ही पढ़ाना हम लोग का टारगेट था ही नहीं, शुरू से ही नहीं था। मेरा खुद का पैशन है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें सस्टेनेबिलिटी देखता हूँ, तो हम लोग मतलब इतना बेहतर किए कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे वो भी हमारे पास अप्रोच करना शुरू किए कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाइए, तो ये पहला स्टेप था कि हम लोग स्कूल को सस्टेनेबल बनाए और उनके बच्चों को भी हम लोग अपने पास लेना शुरू किए। इससे मुझे दो फायदा हुआ, उनके बच्चों को एटलीस्ट बोलने आता था, खड़ा होने आता था, कपड़ा पहनने आता था, तो मुझे लगा कि जो बाकी बच्चे हैं उनको देख के सीखेंगे, तो हमने उनके बच्चों को भी लेना शुरू किया और इससे फायदा भी मिला, बाकी जो स्लम एरिया के बच्चे थे उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला, अच्छे दोस्त मिले यहाँ पे, और पैरेलल हम लोग एजुकेशन देना शुरू किए, तो बहुत सारी चीजें तो वो उनसे इंटरेक्ट होके ही सीखना शुरू कर दिए और बाकी हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे।
ओके एक बात और बताओ कि गांव में या तो ऐसे एक रूरल एरिया में जो कि काफ़ी अंदर है, इधर पे लड़कियों का एडुकेशन कैसा है या उनका लाइफ कैसा है बचपन से?
पता नहीं इस पे इफेक्ट किसका है, लेकिन भेदभाव तो है, हम लोग भले ही बोलते हैं कि इक्वालिटी की बात की जाए लेकिन इक्वालिटी है नहीं। अब एक नॉर्मल जैसे मैं अपने घर का, मैं खुद का बताता हूँ, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दूंगा, मेरी 4 बहनें हैं, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, कोचिंग वगैरह किया हूँ, उस समय फी 50 रुपया था, फिर भी मेरे घर वाले शायद मेरी बहनों को अफोर्ड नहीं कर पाए, वहां पे वो नहीं जाती थी पढ़ने के लिए लेकिन मैं जाता था, तो ये भेदभाव मतलब हमारी फैमिली एजुकेटेड थी लेकिन फिर भी वो मतलब इनका कॉन्सेप्ट ही था, उनकी नजर से भेदभाव नहीं था लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि ये था, तो ये जनरल चीजें हैं। यहाँ पे लड़कियों को ग्रेजुएशन भी इसलिए कराया जाता है कि लड़का ढूंढने में इजी होगा, दहेज कम देना पड़ेगा या फिर ऐसी चीजें, मतलब पर्पस होता है कि अच्छे घर में शादी हो जाएगा इसको हम लोग पढ़ा देंगे, तो लोगों को ये मतलब नहीं है कि लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे चल के ये जॉब कर सकती हैं, खुद की लाइफ बना सकती हैं, कहीं सेटल डाउन हो सकती हैं या फिर खुद के बारे में सोच सकती हैं, अभी भी गाँव में लोग ये नहीं सोचते हैं। पाठशाला कॉन्सेप्ट में हमने इसको यूज किया, मुझे मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोग टीचर कहाँ से लाएंगे, टीचर को हम लोग ज्यादा पैसा दे नहीं सकते क्योंकि हम लोग का मॉडल इकोनॉमिकल था, हम लोग ज्यादा पैसा लेते नहीं है बहुत सारे बच्चों से, या फिर लेते हैं तो बहुत कम लेते हैं, तो हम लोग पैसा दे नहीं सकते, तो मैं ये सोचा कि जो लड़कियां हैं यहाँ पे इंटर ग्रेजुएशन करके अपने घर में बैठी हैं, केवल खाना बनाती हैं, वो कुछ सोचती नहीं है, उनको कहीं जाना नहीं है, उनको मैं अपने स्कूल में लाऊं, उनको ट्रेनिंग दूं। और पहला पायलट बैच था मेरा, उसमें 30 लड़कियों को हम लोग ट्रेनिंग दिए लगभग 6 महीने के लिए, उसमें बेसिक कंप्यूटर, इंग्लिश, टीचिंग एलिजिबिलिटी, ऐसी बेसिक चीजें हम लोग सिखाए उन्हें, और उनमें से 15 लड़कियां अभी हमारे पास पाठशाला में है, जो मतलब रेगुलर एक्टिविटीज में है, हम लोग उन्हें इनरोल कर चुके हैं, वो हमारे पास अभी पढ़ाती है, और शुरू के दिन से अगर मैं अभी आपको बताऊं, शुरू के दिन से उन्हें ये भी नहीं लिखने आता था कि माई नेम इज रेखा, इतना भी नहीं आता था, अब हमारे पास वो 3 साल से है, हम उन्हें थोड़ा सा पैसा भी दे देते हैं, कहीं बाहर बच्चों को ले जाना होता है आउटडोर क्लासेस पे खुद से ले जाती है, तो मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंसी मतलब लड़कियों में हम लोग दिए हैं, बहुत ज्यादा दिए हैं। एक और बारे में बात करके नहीं कर, मतलब ये सिचुएशन था, लड़कियों को 3 किलोमीटर बाजार जाना है तो वो अकेले नहीं जा सकती है, इतनी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने भाई को ले जाएगी, अपने चाचा को या फिर पापा को ले जाएगी, तो इस पिछले 3 साल में मैं इतना जरूर कर पाया हूँ या फिर हम लोग इतना जरूर कर पाए हैं कि लड़कियां हमारे पास आती है, और यहाँ तक केवल गांव की लड़कियां नहीं आती है, हमारे पास अभी दूसरे शहरों की भी लड़कियां आती हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, मेरे घर पे रुकती है मतलब पाठशाला पे रुकती है, वो यहाँ पे करिकुलम में मतलब शामिल होती हैं, पढ़ाती हैं या फिर ट्रेनिंग देती हैं, तो लड़कियों के एजुकेशन को लेके भी हम लोग काम कर रहे हैं। पर्पस ये है कि इनिशियली जो भी, जैसे कि गवर्नमेंट आजकल कोर्सेज करा रही है KYP मतलब स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज, एक एक नया सिस्टम गवर्नमेंट पढ़ा रही है हमको इंटरमीडिएट के बाद, मतलब 3 महीना। अगर मैं खुद का रिकॉल करूं, खुद का दिन जब मैं पहली बार कंप्यूटर छुआ था, तो मुझे माउस का बेसिक समझने में 3 मिनट लग गया। मुझे नहीं लग रहा कि उस कोर्स से कुछ होने वाला है, तो इसी से। और फाइनली वो कोर्स अगर हो भी जाए तो कनेक्टिविटी कहाँ है, उसके बाद वो क्या करेंगे, अगले 1 महीने में भूल जाना है। लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हम जो ट्रेनिंग देते हैं उन्हें कनेक्टिविटी देंगे। हम लोग यहाँ पे उन्हें छोटे मोटे जॉब्स देने का प्लान कर चुके हैं, शुरू भी कर चुके हैं। अभी हमारे पास 20 लड़कियां जॉब भी करती हैं, मतलब हम उन्हें स्कॉलरशिप टाइप 2000-3000 पे करते हैं यहाँ पे। वो हमारे पास टाइपिंग का काम करती है, डेटा एंट्री का काम करती है, कंटेंट राइटिंग का काम करती है, हमारे पाठशाला में पढ़ाने का काम करती है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बेसिक है जिस रिवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जो हम लोग सोच रहे हैं लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने का रूरल एरिया में, उसकी शुरुआत है। जिस दिन हम किसी लड़की को 2000 ही पे करते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए, तो ये थॉट प्रोसेस उसके माइंड में आएगा कि हम लोग अब कुछ कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, शहरों में जा सकते हैं, बड़ी नौकरी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जरिया था कि हम लोग डिजिटली चीजों को यूज करें कि कनेक्टिविटी अच्छे लोगों से मिले, तो हम लोग वैसे ही यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किए हैं सब चीजों का और फायदा हो रहा है।
सो कहीं ना कहीं जो मैं समझ रहा हूँ, कहीं ना कहीं सिर्फ रूरल एरिया में एडुकेशन देना नहीं, उसके साथ साथ उसके बाद उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना भी उसका एक पार्ट है, तभी जाके वो एक कंप्लीट सपोर्ट बनेगा।
एजुकेशन सस्टेनेबल नहीं है आज की डेट में। अभी जैसे हम लॉकडाउन की बात करें, अभी लॉकडाउन हुआ है तो अच्छे खासे लोग जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस से बीटेक या फिर एमबीए किया है, उनके भी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ की लड़कियां खास करके, मैं बताया ना कि वो ग्रेजुएशन के बाद 3 महीने 6 महीने का कोर्स उनके लिए नया होता है, जो 1 महीने में भूल जाएंगे छोड़ने के बाद। और फाइनली अगर मतलब मेन सोल पर्पस, अभी एजुकेशन का सोल पर्पस आजकल है एम्प्लॉयमेंट, मतलब पैसा आना चाहिए। हमारे पास अगर महीने का 5000 भी नहीं होगा, हम खाने लायक भी नहीं कमाएंगे, तो इंडिपेंडेंसी के बारे में नहीं सोच सकते। अल्टीमेट है कि हम लोग पढ़ाने के बाद उन्हें जॉब दें। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम लोग जो कोर्स डिजाइन किया अभी वो 1 साल का है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप समझिए कि स्कूटी ड्राइविंग है, बैंक्स में हम लोग बहुत सारे जगह उनको एक्सपोजर भी देते हैं, जैसे बैंक विजिट करवाते हैं, रेस्टोरेंट विजिट करवाते हैं, पार्क विजिट करवाते हैं, ट्रेन विजिट करवाते हैं, कि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। और फाइनली 1 साल के कोर्स के बाद मेरा ये प्लान है कि, या फिर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो बाहर तो नहीं जा सकती है सडनली, तो हम उन्हें यहीं पे कुछ ना कुछ जॉब दें। एक चीज और, मतलब लोगों ने क्या किया ना कि जॉब को जेंडर बायस कर दिया है। अब लड़कियां हैं तो खाना बनाएंगी, सिलाई मशीन का काम करेंगी, तो अगर वो सिलाई मशीन पे 5000 महीने का कमा रही है, फिर 10000 कमा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट कहीं पे होने वाला है, क्योंकि वो जिंदगी भर सिलाई मशीन करेगी और इसी इन्वायरमेंट में रहेगी। दूसरी तरफ मैं अगर किसी को कॉन्टेंट राइटिंग का काम देता हूँ, तो आज वो एक फिल्म मेकर से बात करेगी, कल किसी एक्टर से बात करेगी, उसके बाद किसी सोशल एक्टिविस्ट से बात करेगी, फिर किसी डॉक्टर से बात करेगी। मतलब उसका जो कनेक्टिविटी होगा वो डिफरेंट वर्ल्ड से होगा, डिफरेंट लोगों से होगा, वैसे लोगों से होगा जो सक्सेस है। या फिर मैं आज उन्हें डिजिटल मार्केटिंग का काम, तो वो डिजिटली चीजों को देखेंगी, समझेंगी, इंटरनेट के बारे में जानेंगी, रेलवे के बारे में पढ़ना है तो इंटरनेट में पढ़ सकती हैं। तो ये हमारा जो टारगेट था ना कि हम लोग सिलाई मशीन टाइप कुछ काम नहीं करेंगे, भले ही इनिशियली हम लोग उन्हें 2000 का ही काम दिला पाए, लेकिन कनेक्टिविटी उन्हें बेहतर देने की जरूरत है कि वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाए, मतलब गाँव के माहौल से थोड़ा सा बाहर निकले, देखे कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो हम लोग डिजिटल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको डिजिटल कनेक्शन देने का बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आप।
ओके तो हमारे पास एक सवाल आया है प्रकाश, जो पूछ रहे हैं कि अगर हम कंसीडर करें कि जिस तरीके से स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारे रूरल एरिया में बढ़ रहा है, क्या हम एक कोई ऐप बेस्ड एडुकेशन रूरल एरिया में नहीं ला सकते?
बिल्कुल, इसी लॉकडाउन में मेरे पास ऐसा सजेशन आए थे। इनफैक्ट आपने भी एक सजेशन दिया था होम मिनिस्ट्री की तरफ से, हम लोग को सजेशन भेजने थे कि डिजिटल एजुकेशन में क्या कर सकते, क्योंकि अभी लोग क्या है ना कि मतलब ऑल्टरनेटिव के बारे में सोच रहे हैं। अभी सिचुएशन वैसे ही है कि लोग स्कूल में तो जा नहीं सकते, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब गांव में देखें क्या हो सकता है, गांव में पेरेंट्स तो एजुकेटेड है नहीं, उन्हें मोबाइल यूज करने नहीं आता है। इनफैक्ट बहुत बेसिक सी चीज है, वो छोटी मोटी चीजों को नहीं पहचान पाते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि मोदी जी का फोटो लगा के किसी ने उस पर कुछ लिख दिया, मोदी जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो उनको लगता है कि मोदी जी ऐसा बोल दिया। मतलब डिजिटली वो लोग इतने वीक है, या फिर बहुत लोगों के पास मोबाइल्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप तो है ही नहीं, अच्छे लोगों के पास भी लैपटॉप नहीं है, तो अभी अभी के फिलहाल अभी के मतलब इन्वायरमेंट पे या फिर अभी के जिस हिसाब से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये ज्यादा इफेक्ट मतलब इम्पैक्टफुल नहीं है। फिर भी हम लोग एक ऐप डिजाइन कर रहे हैं जिस पे हम लोग काम करना शुरू भी कर दिए हैं। इसमें हम लोगों ने बेसिक चीजों का प्लान किया है, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्कूल खुलते ही एडल्ट एजुकेशन शुरू करेंगे जिसमें गार्जियंस को टारगेट किया जाएगा, उनको बुलाएंगे, हम लोग बेसिक चीजें समझाएंगे। मुझे लग रहा है कि 1 महीने में हम किसी ऐप को यूज करना बिल्कुल सिखा सकते हैं, डेली आधा घंटा 1 घंटा का क्लास देके। क्योंकि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बिलो मैट्रिक है, मतलब 8th 7th, तो उनके पास मोबाइल नहीं होगा। डेफिनेटली पेरेंट्स को एजुकेटेड होना है, और जो भी हम लोग पढ़ाई जैसे एंड्रॉयड का ऐप है तो कंप्यूटर को समझने के लिए इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज सब कुछ इंग्लिश में यूज हुआ है। हम लोग कितना भी हिंदी में कन्वर्ट करते हैं लेकिन थोड़ा मोड़ा होता है, तो हम लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो बिल्कुल हो सकती है, उम्मीद हमेशा है, हर एक जगह है, हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं।
तो अभी जैसे तुम बिहार के छपरा ज़िले में एक ऐसे छोटे से गांव में काम कर रहे हो, तो तुम ज़रूर ऐसे और लोगों को जानते होंगे जो ऐसे ही अलग अलग गांव में, अलग अलग रूरल एरिया में छोटे छोटे स्कूल बना के, छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप्स को लेके काम कर रहे हैं। तो क्या उनके बारे में थोड़ा हमें बता सकते हो?
हाँ बिल्कुल, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो काफी बेहतर काम कर रहे हैं। इवन एक मेरा दोस्त है IITian है, तो सिंगापुर में जॉब ही कर रहा था, काफी बेहतर जॉब कर रहा था, इस फ्रॉम आसाम। वी मेट फ्यू डेज अगो, मतलब फ्यू इयर्स अगो वी मेट। वहाँ पे वो डिफरेंट एजुकेशन दे रहा है, वो भी एक ट्राइब एरिया है, वहाँ बच्चों को पढ़ाता है, और जैसे हम लोग का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिजिटल एजुकेशन वगैरह देने का, तो वो भी वैसा शुरू किया है। एक मेरी दोस्त है, शी इज इन लखनऊ, मतलब वो भी है और शादी की हो तो उसके हस्बैंड भी है, दे आर बोथ इंजीनियर, तो वो लोग लड़कियों को भी खेती करना सिखाते हैं। तब अपने पास जो पढ़ाते हैं तो उनका मेनली फोकस है कि हम लोग बच्चों को या फिर स्पेशली लड़कियों को स्किल्ड करें एनवायरनमेंट के बारे में, खेती के बारे में, कि वो मतलब इन सब चीजों का उपज कर सके और सस्टेनेबल हो पाए, थोड़ा मोड़ा पैसा इसे कमा पाए, तो लोग डिफरेंट तरीकों से काम कर रहे हैं। हाँ अभी पूरे इंडिया में मिनिमम 50 लोग ऐसे कांटेक्ट में होंगे जो रूरल एजुकेशन में काम कर रहे हैं, और मुझे भी जब पाठशाला शुरू करना था तो एक मैंने रिसर्च किया था इस पे, और मैं कम से कम 200 जगह खुद बाइक से, मैं ट्रैवलर भी हूँ, तो बाइक से मैं 200 जगह कम से कम घूमने गया था देखने के लिए कि लोग कैसे पढ़ा रहे हैं और क्या इम्पैक्टफुल होना चाहिए और हम लोग मतलब किस तरीके से बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को विजिट करके, वहां रुकने के बाद, बहुत सारी चीजों को सीखने के बाद, हम लोग एक मॉडल ला पाए हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
और मुझे ये बताओ कि जैसे अभी तुम गांव में भी रहते हो और शहर में भी रहते हो, तो तुमने दोनों तरफ के चीज़ों को देखा है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे इंडिया का जो फ्यूचर एडुकेशन है, क्या लगता है किस तरफ जा रहा है, ख़ास करके अभी ये लॉकडाउन के बाद किस तरफ मुड़ सकता है, क्या लग रहा है तुम्हें?
अब एक ही चीज का फोकस होना चाहिए हमारे पास, दैट इज स्किल एजुकेशन। जो भी एजुकेशन हम लोग का है वो स्किल होना चाहिए। अगर जॉब के बारे में हम लोग जॉब के बारे में बात करें तो मतलब कई दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं ला पा रही है, फिर जॉब्स लोगों के नहीं हो पा रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन MBA करने के बाद भी मतलब ऐसे ही घूमते हैं, फिर खुद का स्टार्टअप करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग को खुद कुछ करना चाहिए, और इसके लिए हम लोग को स्किल होने की जरूरत है। एक चीज मैं बताता हूँ, जिस इसको कनेक्टिविटी मैं दूंगा अपने स्कूल से ही, हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर एजुकेशन का काम शुरू किया है। मेरा ये मानना था कि हम लोग नहीं चाहते हैं, जिनके पास कंप्यूटर वगैरह है वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग अपने कंप्यूटर को किसी शहर में दिखाने के लिए जाएं, क्योंकि बल्कि है, ले जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पे मतलब लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहीं पे एक हार्डवेयर का मतलब सेटअप बना रहे हैं जिसपे हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर में ऐप डेवलप करेंगे या फिर एडवर्टीजमेंट कराएंगे, किसी का अगर सिस्टम खराब हो तो हमारे पास ला सकता है, गांव में ही हम लोग गांव में रिपेयर करेंगे, या फिर हम लोग डिलीवरी बॉय टाइप रखेंगे जो जाके वहां से कलेक्ट करेगा, फिर हम लोग बनाएंगे, फिर उसको दे देंगे। तो मतलब स्किल की बहुत जरूरत है। अगर हम किसी को मैट्रिक करा देते हैं, इंटर करा देते हैं, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन हो जाता है लोगों में, खास करके बिहार और UP जैसे शहरों में, सॉरी राज्यों में, लोग इंटर करने के बाद 4 साल 5 साल सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, और वो पढ़ते क्या है, केवल मैथमेटिक्स, रीजनिंग मैथमेटिक्स, रीजनिंग मैथमेटिक्स, रीजनिंग। उनका कनेक्टिविटी जो मतलब दुनिया बदल चुकी होती है 5 सालों में, डिजिटलाइजेशन में, कंप्यूटर में, नेटवर्क में, पता नहीं क्या कनेक्टिविटी, वहां ये स्किल्ड कभी नहीं है, मतलब इसको हम लोग स्किल अकाउंट नहीं कर सकते हैं। मैं ये फील करता हूँ कि अब का जो होना चाहिए। और हम लोग शुरू से ही कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाए, हो सकता है वो म्यूजिक म्यूजिक ही सिखाए, बेहतर तरीके से सिखाए, कंप्यूटर है उसको बेहतर तरीके से सिखाए। हम लोग मैं दिखाऊंगा कभी, हम लोग यहाँ पे गमला बनाए, फाउंटेन बनाए, मिनी कंप्यूटर लैब बनाया, सब कुछ हमने खुद से सेटअप किया, और उसमें हम लोग बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, वो लोग साथ में चीजों को देखे। हो सकता है कि आगे चल के कोई बच्चा मतलब इन 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 सब चीजों में से कुछ एक पिकअप कर ले, और उसमें वो अपना रोजगार ढूंढ ले, उसको एम्प्लॉयमेंट में मतलब ढूंढना शुरू करे, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, इसके साथ स्किल पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है।
ओके, स्किल पे ज़्यादा फोकस, राइट। और इससे पहले मैं एक और एडुकेटर के साथ बात कर रहा था जो शहर से बिलोंग करते हैं। उनका भी ये मानना था कि हमें अपने एडुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं या तो स्कूल या तो पेरेंट्स ये ड्यूटी ले कि अपने बच्चे को स्किल सिखाए और स्किल पे ध्यान दे। तो मुझे लगता है कि स्किल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एडुकेशन इफ़ यू कंसिडर फ्यूचर एडुकेशन। ओके, ठीक है। तो मुझे अब ये बताओ कि एक लास्ट सवाल के जैसा है कि अभी तुम्हें किस किस टाइप पे कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है, मतलब कहाँ पे लग रहा है कि तुम अभी भी थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हो, अगर हम रूरल एडुकेशन की बात करें तो।
मैं यहाँ पे क्या कोशिश किया था, जैसे मैं इंटरमीडिएट के बाद पहली बार ट्रेन में बैठा था और पहली बार दिल्ली गया था, तो मुझे पता नहीं था कि मतलब जो फॉर्मल ड्रेस होता है उस पे फॉर्मल शूज पहनते हैं, या फिर फॉर्मल शूज होता क्या है। मेरे पास एक स्पोर्ट्स शूज था, वही मैं पहनता था। दिल्ली के लड़के पहले से जानते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब दूसरे तरीके से मुझे देखते थे। तो मुझे लगा कि मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे उसका एक्सपोजर नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को वैसे माहौल में जाना होता है। मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर बच्चे यहीं पर रह जाएंगे तो उनका पर्सनालिटी डेवलप नहीं होने वाला है। तो इसके लिए मैं शहरों से लोगों को कनेक्टिविटी देना शुरू किया। मतलब यहाँ पे मैं इंटर्न्स को बुलाता था, यहाँ पे रह के 1 महीना 2 महीना 3 महीना अपने हिसाब से लोग रहें, यहाँ पे ट्रेनिंग दे, हम लोग कुछ पैसा भी पे करेंगे, फूडिंग लॉजिंग भी पे करेंगे। तो कुछ लोग रहते भी थे, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि लोग समझते हैं, लोग बोलते हैं कि रूरल एडुकेशन पे काम करना है या फिर हम लोग चेंजेस पे काम करने हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई गांव में अगर हम लोग 1 महीने 2 महीने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे पिज्जा नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो बहुत सारी चीजें जो आप शहर में बैठे बैठे मंगा लेते हैं एक फोन कॉल पे, यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रूरल एजुकेशन की बात करना छोड़ दें, आप वो चेंजेस नहीं ला पाएंगे। मैं कुछ लोगों से कनेक्ट हुआ था, कनेक्टेड यहाँ पे बुलाया भी था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि कनेक्टिविटी देने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमेशा यहाँ पे 1 महीने 2 महीने के लिए मैं इंटर्न्स को 2-3 बुलाऊं, यहाँ पे वो रहें और यहाँ पे एजुकेशन दें बच्चों को या फिर लड़कियों को। इससे एक फायदा होगा कि वो लोग डिफरेंट लोगों से बात करेंगे या फिर बच्चे बात करेंगे, और मतलब एक पर्सनालिटी उनमें उनको देख के डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और बाकी थोड़ा सा इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, दैट इज मींस वी आर सेटिंग अप दैट आल्सो। हालांकि 3 साल में कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि हम लोग बहुत बेहतर किए हैं। ऑफकोर्स मैंने इसके लिए लोन लोन लिए, काफी मैं बर्डन में था, अभी भी हूँ। तो हम लोग का मतलब हो सकता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है ना उसके चलते हम लोग थोड़े से स्लो है। मतलब जो जो मेरी सोच है, मुझे जितना फास्ट होना चाहिए, मैं जिस स्पीड के साथ डील करता हूँ, तो मुझे लगता है कि और भी मुझे फास्ट होना चाहिए। हालांकि लोगों के नजर में तो हम लोग बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी कुछ रिसोर्सेज की कमी से थोड़ा सा स्पीड स्लो है। तो मुझे लग रहा है जो अल्टीमेट है मेरा, मतलब जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं बना रखा हूँ कि आने वाले 1 साल में 100 लड़कियों को गाँव में जॉब दूंगा। इसके लिए IT सेटअप कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास 30-40 कंप्यूटर होंगे, मतलब बढ़िया स्लैब होगा, IT रूम होगा, उसमें लड़कियां रहेंगी, 3-4 घंटे का जॉब करेंगी, उन्हें हम लोग 2-3 हजार 4 हजार पे भी करेंगे, जो भी हम लोग रिसोर्सेज जुटा पाते हैं। तो ये अगला टारगेट है, हम लोग इस पे काम करना भी शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन है, थोड़ी सी अभी मतलब इंतजार करना पड़ेगा हम लोग, किया जा रहा है। हालांकि हम लोग बैकएंड में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का फाइनल टारगेट ये है कि हम लोग लड़कियों को ट्रेनिंग दें, एम्प्लॉयमेंट पे काम करें, और फिर अपने पाठशाला का मतलब एक्सपैंड करें। इसे हमारे पास अगर मैन पावर हो जाएगा तो 20 लड़कियों को मैं यूज करके 20 जगह कम्युनिटी सेटअप डाल सकता हूँ। अभी नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हैंड्स नहीं। तो ट्रेनिंग इन प्रोसेस है, लॉकडाउन के बाद हम लोग बहुत ही इसको स्पीडी मतलब एक्सलरेशन देने वाले हैं, बहुत बेहतर होगा।
ठीक है। और जो हमारे ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर फ्यूचर में कहीं और से सुने, अगर कोई तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहे या कोई आके बोले कि मैं उधर पे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी हो, तो वो तुमसे कनेक्ट कैसे करेंगे?
आप कनेक्शंस के लिए वैसे तो सब कुछ है, पाठशाला का फेसबुक पेज है, हम लोग का वेबसाइट है, मेरा फोन नंबर है, फेसबुक प्रोफाइल है, सब कुछ है, आप है, प्रोजेक्ट नोमैड है,
जी
कहीं पे भी अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। मैं एक और चीज प्लान किया था कि वैसे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं शहर में रह के सेल्फ स्टडी करना, तो मेरे पास बहुत बड़ा कैंपस है यहाँ पे जिसमें हम लोग किचन सेटअप किए हैं, सब कुछ है, मतलब बिल्कुल शांति है, आपको कोयल की आवाज सुनाई देगी मतलब सुबह में, इतना बढ़िया माहौल है, हमारे पास वाईफाई है, लैपटॉप है। तो वैसे लोग जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे पास आ सकते हैं, बच्चों को 3-4 घंटे पढ़ाएं, फिर अपना सेल्फ स्टडी करें, हमारे पास फ्री फूडिंग लॉजिंग का भी फैसिलिटी है, खाए पिए मस्ती करें, आराम से घूमें, बिहार दर्शन करें, वो सब मैं करवाऊंगा, और इसके साथ ही कुछ स्कॉलरशिप भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो भी हम लोग दे देंगे। तो मैं उन लोगों को मतलब कॉल करना चाहूंगा जो रूरल एडुकेशन पे काम करना चाहते हैं और जो चेंजेस के लिए काम करें, डेफिनेटली वो हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं।
जी हाँ, तो अगर कोई भी हमारा ये पॉडकास्ट बाद में सुन रहा हो या अभी सुन रहा हो, अगर कोई किसी को ऐसा जानता हो कि जो गांव में जाके रूरल एडुकेशन पे काम करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और देखिए कितना शानदार काम हो रहा है रूरल एडुकेशन में। ऑफकोर्स कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हमेशा आती रहती हैं, और कोशिश जारी है कि हम कैसे अपने बच्चे को गांव में अच्छा शिक्षा दे सके। छवि कुछ और है जो हम शहर में बैठ के सोचते हैं, शायद वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है गांव में, लेकिन थैंक्स टू प्रकाश और इनके जैसे तमाम लोग, जैसे कि बता रहे कि ऐसे हर गांव में, हर छोटे छोटे शहरों में लोग काम कर रहे हैं, थैंक्स टू ऑल दोज पीपल जो अपना सब कुछ छोड़ के इसी काम पे लगे हुए हैं। तो प्रकाश, थैंक यू एक बार फिर से हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और आई होप कि जितने भी लिसनर आज सुन रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा एक इन डेप्थ व्यू मिला होगा कि रूरल एडुकेशन कैसा होता है और कैसे लोग काम कर रहे हैं।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग बात करते रहेंगे, ये रिश्ता मतलब साथ रहेगा हमेशा के लिए, हम लोग आगे साथ बढ़ेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच प्रकाश, थैंक यू। सो ये था प्रकाश के साथ एक छोटा सा हमारा सफ़र जो अब ख़त्म हो चुका है, और प्रोजेक्ट नोमैड में हम लोगों ने आने वाले 3-4 दिनों में और भी काफ़ी सारे जो हैं इसी तरीके से टॉक्स और लाइव डिस्कशन हमने प्लान किया है। जितने भी लोग सुन रहे हैं ये अभी तो लाइव सुन रहे हैं, और इसके बाद भी हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब और फेसबुक में इन सारे ऑडियोज़ को बार बार सुन सकते हैं, और प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं कहूँगा जितने ज़्यादा लोगों तक ये सारे एडुकेशन बेस्ड और लाइफस्टाइल बेस्ड हमारे डिस्कशन है लोगों तक पहुँचाना चाहिए। कल हम फिर से जुड़ेंगे, कल भी हमारा सेशन है, अगर उसके बारे में आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ आप हमारे या तो इंस्टाग्राम पे या तो फेसबुक पे आप जाके हमारा शेड्यूल चेक कर सकते हैं, उधर पे इवेंट बना हुआ है, हम कितने बजे कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। हमारे सारे लाइव सेशन 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक शेड्यूल्ड है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे होने वाला है, और बाद में हम ये सारे लिंक्स जो है हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे हम इसको शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच टू एवरी वन जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम लोगों ने 3 सेशन किए हैं, शुरुआत किया था हम लोगों ने क्लाइमेट के ऊपर चर्चा करते हुए निखिल के साथ, उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त शहरी एडुकेशन को लेके हमने डिस्कस किया हर्षद के साथ, और आज हम ये दिन समाप्त कर रहे हैं प्रकाश के साथ जो कि गांव में रूरल एडुकेशन पे काम कर रहे हैं, खुद एक इंडियन एयरफोर्स में काम करते हुए ऐसा एक सैनिक है वो, और उसके बाद अपने गांव के लिए भी काम कर रहे हैं। सो इंस्पायरिंग स्टोरीज़, ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इनके साथ जुड़े रहने का, और अगर आप लोग भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट नोमैड आप लोगों को स्वागत करता है, आप प्रोजेक्ट नोमैड में कनेक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे उनके साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी सारे कहानी हैं जो हम लाना चाहते हैं, हम इसके बाद फ्यूचर ऑफ एडुकेशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, वाटर क्राइसिस के ऊपर बात करने वाले हैं, फार्मिंग के ऊपर बात करेंगे, राइट क्लोथिंग क्या कपड़े आपको पहनना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमने हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और इस लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल, एडुकेशन, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं और किस इलाके में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट पे हम आने वाले 4-5 दिनों में हम छोटे छोटे ऐसे टॉक सेशंस लाइव पॉडकास्ट के माध्यम से आपके पास पहुँचेंगे और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इन सारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लोगों को अवेयर कीजिए राइट एडुकेशन और लाइफ स्टाइल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट।